ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्ब्रह्मय विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नम शिवाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नम शिवाय वज्रमन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम वज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए प्रिंप्री आश्रम ट्रस्ट की तरफ से प्रथम प्रकरण का कॉपी तैयार हुआ है, आप लोग गेट के पास से वो कॉपी ले लेना। साथ ही एक ध्यान ये रखना है कि इस कॉपी को आप लेके जाओगे तो कुछ पल्ला पड़ने वाला नहीं है, और क्योंकि इसकी व्याख्या तो हम ही करेंगे, इसमें व्याख्या है नहीं, केवल मूल श्लोक का अभ्यास के लिए है, इसलिए लेके जाओगे तो कुछ पल्ला पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करोगे ये अभ्यास करो, हम व्याख्या करेंगे, जाते समय सुरक्षित छोड़ के जाना, यहीं रख जाना ताकि कल फिर मिल जाएगा। अब आप छोड़ के नहीं जाओगे तो फिर कल क्या मिलेगा। हमारे पंडित लोग यही तो कहते हैं, यहां गाय दान करो तो मरने के बाद गाय मिलेगा, स्वर्ग में गाय का दूध मिलेगा तुमको। अब यहीं गाय का दान नहीं कर रहे हो तो मरने के बाद स्वर्ग में कहां गाय मिलने वाला है, है? तो तमाम धर्म कर्म इसी पर आधारित है ना, तो यहां करोगे तो आगे मिलेगा। तो ये कॉपी यहां प्रेमपुरी आश्रम में छोड़कर जाओगे तो कल मिलेगा, लेके जाओगे वहीं रख दोगे, फिर कल आओगे अरे लाने तो भूल गए। तो अभ्यास करो पांच श्लोकों का। नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द सेवा निर्मल चेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते शब्दस्पर्शादयो विद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संविद् ऐकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्ने अत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो अतस्तयोः संविद् एकरूपा न भिद्यते सुप्तोत्थितस्यासौ सुप्ता तमोबोधो भवेत् स्मृति सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदात्तमः तो प्रसंग चल रहा है मंगलाचरण विद्यारण्य स्वामी जी ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। नमः श्री शंकरानंद हम उसको नमस्कार करते हैं जो श्री से युक्त है। श्री का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है। सनत सुजातीय दर्शन में भगवान सनत सुजात ने राजा धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा, ये सब ब्राह्मी श्री, ये जो ब्रह्म विद्या है वो ब्राह्मी श्री है। तो संसारी लोग श्री का अर्थ लक्ष्मी करते हैं, सन्यासी लोग श्री का अर्थ ब्रह्म विद्या करते हैं। इसलिए संसारी लोग पैसे के लिए श्री विद्या की उपासना करते हैं और श्री यंत्र की उपासना करते हैं, और सन्यासी लोग श्री यंत्र की उपासना, श्री विद्या की उपासना ब्रह्म विद्या के लिए करते हैं। प्राय करके सभी ने श्री विद्या की उपासना की है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही श्री विद्या उपासना का विधि तैयार किया और खुद भी श्री विद्या के उपासक थे। कर्पात्री महाराज जी श्री विद्या के उपासक थे। बड़े बड़े संत लोग श्री विद्या के उपासक हुए। लेकिन समाज में ये भ्रांति फैली कि ये सन्यासी लोग श्री यंत्र की उपासना क्यों करते हैं, श्री विद्या की उपासना क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इन्हें श्री विद्या की उपासना, श्रीयंत्र की उपासना। तो ब्रह्म विद्या के रूप में श्री विद्या की उपासना हुई है। तो नमः श्री श्रियायुक्तः, और क्योंकि ब्रह्म विद्या के मुख्य गुरु भी शंकर हैं, ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वरः, श्रुति ने भगवान शिव के जो ईशान मूर्ति है, ऊर्ध्वमूर्ति ऊर्ध्वमुख ईशान स्वरूप, पंचवक्त्र में ऊर्ध्ववक्त्र है, ऊपर का जो मुख है उसको ईशान बोलते हैं, तो वह ब्रह्म विद्या के ईश्वर हैं। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान भगवान शिव के पंचमुख पांच स्वरूप, क्रमशः ये पांच नाम हैं, पांच स्वरूप हैं, ये क्रमशः सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अनुग्रह और तिरोधान। तो इसलिए हमने बहुत पहले इसी प्रेमपुरी आश्रम में जब दिव्य पथ का आरंभ हुआ था युवाओं का, तो उस समय हमें ही प्रवचन करने का क्रम प्रस्ताव रखा गया हरिदास कृष्ण भाई के पिताजी ने, आपको उद्घाटन करना है। तो हमने कहा हम तीन दिन तक प्रवचन करेंगे रोज, और किस विषय में करेंगे, तो बोले ओम नमः शिवाय, इस पर हमने बोला है। रोज दो घंटा प्रवचन करते रहे, ओम नमः शिवाय, पहले दिन ओम, दूसरे दिन नमः, तीसरे दिन शिवाय। यह अभिलेख होना चाहिए, प्रेमपुरी आश्रम में रिकॉर्ड होना चाहिए, ओम नमः शिवाय पर मेरा जो प्रवचन है यह होना चाहिए। तो उस पर हमने व्याख्या की थी, तो ओम ही नमः शिवाय है और नमः शिवाय ही ओम है, क्योंकि नमः शिवाय में पंचाक्षर हैं और ओम में पांच अवयव हैं, और शिव के पांच स्वरूप प्रसिद्ध हैं, आ ओ म नाद और बिंदु, पांच अवयव हैं ओमकार में। तो वह क्रम से वही सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान के प्रतीक हैं। तो ओमकार खुद पंचवक्त्रा है, ओमकार में खुद पांच मुख हैं भगवान शिव के। तो इस तरह हमने वहां व्याख्या की थी, तो आप लोगों को कभी वो सुनना हो या कैसेट लेकर सुनते रहो। गुरु का नाम भी शंकरानंद था और भगवान शिव भी शंकर हैं। शंकर दुखी होंगे कि सुखी होंगे, शंकर को कभी दुख होगा कि नहीं, शंकर को पत्नी मरने पर दुख होगा कि नहीं, है? नहीं होगा। तो उसके लाश को फिर कंधे में लेकर क्यों चलते रहे थे? दुख का जहां कोई लेश प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी का नाम तो शंकर है, इसलिए वो आनंद है, शंकरानंद, शंकर ही आनंद है। आनंद के अलावा भगवान शिव कुछ भी नहीं है। जैसे मधुरता, मिठास के अलावा मिश्री कुछ भी नहीं है, न उसमें छिलका है न गुठली है। मिश्री में छिलका होता है कि नहीं है, और गुठली होती है कि नहीं है? मिश्री में न छिलका होता है न गुठली होती है। इसी तरह भगवान शिव में आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए शंकरानंद, इसलिए सदघन चित घन आनंद घन ये शब्द प्रयोग किया जाता है। शास्त्र ने परमात्मा के लिए ये तीन शब्द एक साथ प्रयोग करते हैं। सत घन, सत्ता के अलावा कुछ नहीं। चित घन, चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं। आनंद घन, आनंद के अलावा और कुछ नहीं। सीटामोल के जो टैबलेट्स होता है उसके ऊपर जो कवर रहता है उसको निकालने के बाद जो सीटामोल है, टैबलेट्स है, उसमें छिलका गुठली क्या होता है बोलो? सीटामोल टैबलेट्स के छिलका होता है, गुठली होती है, औषधि औषधि है उसमें। इसी तरह परमात्मा में सतघन चितघन आनंद घन। नमः श्री शंकरानंद गुरु। तो शंकर भी गुरु हैं, विद्यारण्य के गुरु भी शंकरानंद हैं। तो कल हम संकेत कर रहे थे भगवान शिव स पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। महर्षि पतंजलि ने शिव को दुनिया में प्रथम गुरु माना है। हमारे जो पूर्वज 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 गुरु हैं, गुरु परंपरा के, वो सबसे पहले गुरु तो शिव ही है। इसलिए हमारे सन्यासियों में परंपरा है, गुरु वंदना के क्रम में हम ये वंदना करते हैं, ये श्लोक उच्चारण करते हैं। सदा शिव समारंभान शंकराचार्य मध्यवान अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। भगवान शिव से गुरु परंपरा चली है, प्रथम गुरु शिव है, और वह गुरु परंपरा बहुत से गुरु हुए उसके बाद। सनत कुमार आदि भी गुरु हुए, नारद भी गुरु हुए, और बीच में शंकराचार्य जी हो गए। उसके बाद फिर त्रोटकाचार्य सुरेश्वराचार्य आदि होते गए और आज अपने जो गुरु हैं है? आज अपने अपने आपके जो गुरु हैं, हमारे जो गुरु हैं, उसी परंपरा के। ये कोई और वंशज नहीं है और परंपरा के नहीं है। आप लोगों के खानदान में, हमारे खानदान में तो वर्ण शंकर हो गए होंगे, नहीं भी हुए हो है? नहीं भी हुए हो। ब्राह्मण का बेटा वैश्य की बेटी से शादी कर लिया तो वर्ण शंकर हो गया कि नहीं बोलो? वैश्य का बेटा ब्राह्मण की बेटी से शादी कर लिया तो वर्ण शंकर हो गए है? ये नहीं समझ लेना कि भाई मनुष्य से मनुष्य ने शादी की तो क्या वर्ण शंकर है, तो ऐसा नहीं होता है। मनुष्य कहने मात्र से नहीं बनता है, वर्ण शंकर का अर्थ ही यही होता है। वर्ण में सांकर्यता, सम्मिश्रण, वर्ण में सम्मिश्रण होना ही शांकर्यता। मिश्रण को शंकर बोलते हैं है। आप लोग क्या बोलते हो? मिश्रण, क्रॉस ब्रिड बोलते हो तो वही है वर्ण शंकर। लेकिन गुरुओं में वर्ण शंकर नहीं होता है वो बिंदु वंश में वर्ण शंकरता की समस्या आ सकती है, नाद वंश में वर्ण शंकर कोई संभावना ही नहीं। नाद वंश में वर्ण संकर की संभावना कहां से आ गई? सनत कुमारों को यो भद्रया मुद्रया चिन्ह मुद्रा द्वारा भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया है, तत्त्वम असि जीवो ब्रह्मैव नापरा। ये मुद्रा चिन्ह मुद्रा जीवो ब्रह्मैव नापरा है ना। ये जो उपदेश पहले भगवान शिवा ने किया था सनत कुमारों को, वही आज भी हमारे गुरु हमको उपदेश करते समय तत्त्वमसि ही करते हैं। उसमें और कोई भाव मिश्रण नहीं होता है। तो कहां से वर्ण संकर हो गया? इसलिए वर्ण संकर की कोई संभावना नाद वंश में नहीं है। बिंदु वंश में वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वर्ण संकरीयता हो सकती है। देखो, एक सन्यासी कंधे में जनेऊ तो राखे, समझे? कंधे में जनेऊ यज्ञोपवीत जनेऊ तो रखे और सिर में चोटी न रखे, तो उसको वर्ण संकर कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? जनेऊ वैष्णवों का है, है? जनेऊ और टोपी वैष्णवों का, चुट्टिया वैष्णवों के परंपरा में है। शिखा सूत्र छेदन वैष्णव परंपरा में नहीं होता है, सन्यासी में ही होता है, शंकराचार्य परंपरा में। अब सूत्र रखा तो शिखा रखने ही पड़ेगा, शिखा रखा है तो सूत्र रखनी ही पड़ेगी। अब उसने क्या किया कि वैष्णव से दीक्षा लेकर सूत्र रख लिया, सन्यासी से दीक्षा लेकर चुटिया काट ली, तो वो वर्ण संकर हो सकता है। तो ऐसा गुरु परंपरा नहीं चलेगा बाबा। नमस्त्री स पूर्वेशम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। तो नारद जी ने सनत कुमारों को कहा कि तुम्हें गुरु दीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे कितने ही ज्ञानी हो। ज्ञानी हुए इस नाते से शास्त्र मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति हो गया तो क्या संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार मिल गया उसको? हैं? प्रधानमंत्री हो गया तो क्या भारतीय संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार मिला उसको? प्रधानमंत्री है तो संविधान के दायरे में है, राष्ट्रपति है तो संविधान के दायरे में है। तो तुम ज्ञानी भी हो तो शास्त्र के दायरे में हो, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन ज्ञानी भी नहीं कर सकता है। यदि ज्ञानी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो फिर यदेदाचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवी तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? इस मर्यादा का क्या मर्यादा रह जाएगी? इसके लिए ज्ञानी को भी शास्त्र मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा तो गुरु खोजने के लिए चले सनत कुमार, लेकिन सर्वत्र दोष दृष्टि, इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत का बहुत प्रसिद्ध है। यस्य यादृशी दृष्टि ही तस्य तादृशी सृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि है ना। तुलसीदास जी ने इसी का तो अनुवाद कर दिया तुलसी कृत रामायण मानस में, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखही तिनी तैसी। वहां तो प्रभु की मूर्त की बात कर दिया, यहां तो ये पदार्थों के भी यही है। वेदांत तो ये कह रहा है केवल प्रभु की मूर्ति की बात छोड़ दो, हर मूर्ति को उसी तरह देखता है जैसे जिसकी भावना है। नहीं तो एक पेड़ के ठूंठ को चोर कैसे देखा जाएगा? पेड़ का ठूंठ कहीं चोर हो सकता है? लेकिन देखते हैं कि नहीं, पेड़ का ठूंठा चोर कैसे हो सकता है? बोलो, लेकिन देखने वाला देखेगा कि नहीं। रस्सी सर्प कैसे हो सकता है? हो सकता है रस्सी सर्प, लेकिन देखने वाला देखेगा कि नहीं। तो ये क्या है? जाकी रही भावना जैसी। क्योंकि सर्प का संस्कार उसके अंदर था तो उसने रस्सी को भी सर्प देख ली। इसलिए आगे आप पंचदशी पढ़ोगे, अवश्य ही पढ़ोगे, हैं? क्योंकि शुरू हो चुका है। एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्ष लगे, तुम जियो हम जिए, हैं? तो सुनोगे ही। तो दो प्रकार की सृष्टि की चर्चा विद्यारण्य मुनि जी ने की है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि पदार्थमयी है, जीव की सृष्टि मनोमयी है। जीव को सृष्टि करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, जीव केवल कल्पना मात्र से सृष्टि कर लेता है। बात समझ में आई कि नहीं? किसी परमात्मा के संकल्प से, उसकी कृपा से पैदा हुई हुई कोई लड़की को पत्नी बनाना हो तो नाक जोड़ना पड़ेगा कि कान जोड़ना पड़ेगा कि मिट्टी लाकर जोड़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? बोलो, उसमें क्या चिपकाना पड़ेगा? कोई चिपकाना पड़ेगा कुछ? खाली मन से कल्पना ही तो करो, ये मेरी पत्नी है। हो गई कि नहीं पत्नी है? हो गई कि नहीं? बोलो। पत्नी की जो सृष्टि है उसकी केवल मानसिक है। ईश्वर सृष्ट किसी लड़के को किसी के पति बनाना हो, वो उसके मन से पति बन जाएगा। वो उसके मन ने कहा कि मेरा पति बने तो पति बन गया है। पति बनाने के लिए, किसी लड़की को, किसी लड़के को पति बनाने के लिए क्या काट छांट करना पड़ेगा? क्या जोड़ तोड़ करना पड़ेगा? बोलो, है? कुछ जोड़ तोड़, कोई माइनस प्लस कुछ करना पड़ेगा? मन से कल्पना कर दी है उसने। ये इसको बोलते हैं मानसी सृष्टि। जीव सृष्टि टोटल मानसी है। जीव आत्मा पदार्थ का सृष्टि कर ही नहीं सकता है। पदार्थ कर सृष्टि तो ईश्वर की सृष्टि है। तुम जिसको घर बन कहते हो कि मैंने घर बनाई, क्या बनाया तुमने? मिट्टी बनाया कि पानी बनाया कि आकाश बनाई कि क्या बनाया तुमने और घर बनाई तुमने? बोलो। मानसिक सृष्टि। तो दृष्टि सृष्टि बात। तो सनत कुमारों की दृष्टि ठीक नहीं थी। क्या? कि हम जन्मजात सिद्ध हैं, ज्ञानी हैं, और हमसे छोटे और सब हमसे छोटे हैं, और गुरु तो हमसे बड़ों को ही गुरु मानना चाहिए, छोटे को क्या गुरु माने? तो हमसे बड़ा तो कौन है? तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं या शिव है, तो उन्हीं को गुरु बनाते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है। तो ब्रह्मा जी क्या गए? तो वो तो प्रपंची कर्म मार्गी ब्रह्मा जी तो है। ब्रह्मा येन कुलाल वन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। ब्रह्मा तो दिवाली के हलवाई की तरह है। क्या दिवाली में हफ्ता 15 दिन पहले हलवाई को फुर्सत होता है? बोलो। बात करने की फुर्सत नहीं है उसको। मिठाई बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है रात दिन, क्योंकि सब खरीदने आएंगे, वही उसका सीजन है। तो ब्रह्मा जी तो कुलालवन कुंभकार की तरह घड़े बनाए जा रहा है, घड़े बनाए जा रहा है, है? नाना छिद्र घटोधर, नाना छिद्र घटा, ये देख लो, ये रात दिन है। एक जीव पहुंच गया आत्मानंद नाम का, वो तो अभी पड़ा है, पहले पता नहीं क्या था, ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे शरीर दे दो। अब शरीर दे दो तो जो ऐसे देना नहीं बनता है, उसके कर्म को देखना पड़ेगा, क्या क्या कर्म है, कैसा कर्म है, कैसा शरीर देना है। उसने शरीर तो मांगा, भोगायतन मांग ली, देना तो पड़ेगा ही। सब हिसाब किताब मिलाया तो इसको मनुष्य का शरीर देना है। फिर वो सांचा मनुष्य के शरीर का सांचा लिया, पंचभूत को उसमें डाला, बनाया, ले तेरे प्रारब्ध में यही है, इसके अंदर जा और जो कुछ भोगना है, है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी भोग है इसमें, जाकर मान सम्मान अपमान भोग इसी में, भेज दिया। उसके बाद दूसरा गया जीव आत्मा कोई, उसको देखा, मुझे भी दे दो शरीर। इसका क्या है सर, कैसा शरीर देना है इसको, हिसाब किताब देखा तो उसका कर्म ही ऐसा था, तो सड़क में दौड़े दौड़े खाते रहना था उसका नाम, पूंछ हिलाते हुए सड़कों में दौड़ना और टुकड़े खाना है, तो देखा उसका कर्म ही ऐसा जीवन भर। तो फिर दूसरा सांचा, वो आत्मानंद को बनाया था, वो सांचे से काम नहीं चलेगा। फिर वो दूसरा सांचा निकाला, फिर कुत्ते का शरीर बनाया, ले तेरे लिए ये। उसने कहा कि आत्मानंद को ऐसा शरीर और मुझे ऐसा शरीर, बोले तेरे नसीब में यही है, तो उसी सांचे में ढालकर दो हमको शरीर, बोले तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास कितने सांचे हैं, 84 लाख सांचे हैं। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। 84 लाख योनि बोलते हो ना, योनि माने सांचा डिजाइन, उसी में पंचभूत, सभी में फिर पंचभूत ही है, मेटेरियल तो पंचभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मेटेरियल तो वही है पंचभूत। एक तरफ ढेर बना के पंचभूतों का मेटेरियल रखा है और इधर सांचा ही सांचे हैं, जिसको चाहिए इधर का सांचा निकाला, फिर मेटेरियल तो वही है, ले जा जा। ऐसे प्रपंच में पड़े हुए तो वो हमको क्या तत्वमसी का उपदेश करेंगे? सनत कुमार ने कहा कि मरे बाबा बचाओ उसको, काम से फुर्सत नहीं, हम गए चेला बनाओ, तो चेला बनाने के बाद तू भी इसी सांचे में लग जा, तो हम क्या ब्रह्म विचार करेंगे बाबा, ऐसे को गुरु बनाना ठीक नहीं है। फिर गए विष्णु के पास, तो वो तो ये प्रपंची वो बिलासी, भो देवी श्रीदेवी पांव दबा रही हैं, सारा ऐश्वर्य उनके पास है, ससंग चक्रम सग्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु क्षणम। बोले नहीं बाबा ये तो और विलासी, कहां हम उर्धरे तक, कहां ये दो दो पत्नियों को लेकर बैठे हैं, चले कैलाश शिवजी किया। उस समय देखा भगवान शिव की लीला बड़ा विचित्र, यश्यांके च विवाति भूधर सुता, ले जी दृश्य क्या देखा? तुलसीदास जी ने ध्यान किया है शिव जी का, मानस में तुलसीकृत मानस में पढ़ लो, कैसे शिव जी को ध्यान किया तुलसीदास जी ने, हैं? कैसे शिव जी को? यश्यांके च विभाति भूधर सुता, जिसके गोद में पार्वती बैठी हुई है, ले अरे बगल के कुर्सी में बैठे हो तो भी गनीमत था, तो कुर्सी भी नहीं तो उसके गोद में, वामांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, औरतों का तो भरमार, सिर में भी औरत चढ़ी हुई है, गंगा जी महिला नहीं है वो, एक एक महिला सिर में बैठी है, एक महिला गोद में बैठी है, बवाल। देखो अब ऐसे को गुरु बनाना चाहिए नहीं बाबा, भागे। अब कौन किसको गुरु बना है? सर भगवान शिव ने कहा कि गुरु खोजने निकले, चश्मा गलत लगा ली, कहां से गुरु मिलेगा है? तो उन्होंने कहा पार्वती को कि ये गुरु खोजने आए हैं, इनको जैसा गुरु खोज रहे हैं ऐसा ही गुरु बन देना चाहिए। उसके भावना का आदर करना पड़ेगा। तो पार्वती को रखा और बस एक छोटे से बालक बन गए हैं। चित्रम बटतरहर मोले वृद्धा शिष्या गुरु युवा। पांच छह वर्ष के बालक हो गए और एक लंगोटी लगाया कांध में जने और धड़ा धड़ नंगे धड़ंगे चल रहे हैं निश्चिंत होकर। जाके बड़ के पेड़ के नीचे आनंद से बैठे निश्चिंत जंगल के बीच में। सनत कुमार जब पहुंचे तो बोले यही ठीक है हमारे लिए। देखो है तो उम्र में हमसे छोटा। सनत कुमार कितने वर्ष के थे? सनत कुमार 16 वर्ष। दक्षिणामूर्ति शिव 5 वर्ष के। सनत कुमार तो 16 वर्ष के है। बोले है तो हमसे छोटा, लेकिन छोटा होने से कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या मूर्ति है, क्या सुंदर स्वरूप है, क्या कोई चिंता नहीं है, एकदम विरक्त। कहां हमसे बड़ा ब्रह्मा का प्रपंच, कहां विष्णु का प्रपंच, कहां शिव का विलासता, और कहां है देख लो ये सब बालक जंगल में। इसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वहीं बैठ गए आसन लगाकर। बटतर और मूले वृद्धा शिष्या गुरु हो युवा है। लेकिन ये ध्यान खोले, मुख खोले, हमको उपदेश करे, तब ना गुरु बने। कभी न कभी तो ध्यान खोलेगा। ये बैठे रहे। भगवान शिव ने कहा कि इनकी श्रद्धा बन गई है मेरे प्रति, इनकी श्रद्धा बन गई। पहले श्रद्धा बनी नहीं थी। पार्वती को खोद में, गोद में देखा था, गंगा जी को सिर में देखा था, श्रद्धा नहीं बनी। अब श्रद्धा बन गई तो अब काम बन जाएगा। उन्होंने धीरे से हाथ उठा लिए, तत्त्वमसि का उपदेश कर दिया, जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोले बोले देखो अब उपदेश करेंगे, अब हमको ज्ञान मिलेगा। फिर ध्यान में बैठ गए, बोले ही नहीं कुछ। तो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। तब तक उनकी कृपा दृष्टि हुई। अरे अब बोलने की क्या जरूरत है? देखो इन्होंने जो इशारा किया है यही इनका बोलना है। ये बैखरी वाणी की जरूरत नहीं है यहां। तो बोले क्या उपदेश किया? तो बोले तत्त्वमसि जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये ब्रह्म है, ये जीव है, ये जगत है त्रिगुणात्मिका। इसको अलग करके इनको जोड़ दिया। ये देख लो जीव और ब्रह्म की एकता हो गई, जगत की पृथकता भिन्नता हो गई, जगत की मिथ्यात्व। यही तत्त्वमसि जीवो ब्रह्मैव नापरः की वाक्य का अर्थ है। मिल गया ज्ञान, प्रणाम किया और गुरु धारण कर लिया और चल पड़े। भगवान शिव वापस आए, पार्वती को कहा कि भोजन तैयार है कि नहीं। बोले क्या काम करके आए हो और भोजन मांग रहे हो? काम करके आना पड़ेगा। कुछ काम किया है? बोले बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या किया? बोले एक जिज्ञासुओं का जिज्ञासा को समाधान करके गुरु बनकर आया हूं। तू गुरु मां हो गई आज से है। चलो उपदेश किया। नमः श्री शंकरानंद गुरु, वही प्रथम गुरु भगवान शिव। सनत कुमारों के बाद नारद को उपदेश, नारद ने फिर अब ब्रह्मा जी को उपदेश। ये सब चलता रहा, ये अनादिकाल से चल रहा है। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। पादाम्बु जन्मने गुरुपादः, तो गुरु के चरण में नमस्कार करना है। गुरु का चरण की पैदाइश कहां से हुई है? गुरु जहां से पैदा हुआ है गुरु का चरण भी वहीं से पैदा हुआ है। गुरु का चरण है, गुरु की मां कौन है? गुरु की मां जो भी हो, गुरु के चरण की मां कौन है? गुरु की मां अलग है, गुरु के चरण की मां अलग है। वो आप लोगों को आश्चर्य लगेगा ये सुनकर, यहां अंबु जन्मने, गुरु का चरण पानी से पैदा हुआ है। गुरु किससे पैदा हुआ है उसका हिसाब नहीं खोजना, गुरु की मां कौन है उसका हिसाब नहीं खोजना, गुरु के चरण की मां कौन है? तो जल, अंबु। पानी से कौन पैदा होता है? तो कमल। तो अंबु जन्मने कमल, गुरु चरण कमल। बंदौ गुरु पद पदम पराग, पद्म माने कमल। तुलसीदास जी ने भी गुरु के चरण को क्या कहा? पद्म, कमल। और विद्यारण्य मुनि जी ने गुरु के चरण को क्या कहा? अंबु जन्मने। अर्थ है कि पद्म कहो है, अंबु जन्मने कहो, एक ही चीज हो गया। जल से जो पैदा हुआ तो कौन हुआ? कमल, गुरु चरण कमल। ये भी शब्द आता है, आगे भी आएगा। अंबु जन्मने पादाम्बु, अंबुज जन्मने पाद, नमः, ऐसे चरण कमल में मैं नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करते हो? प्रयोजन क्या है? नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। देखो बड़ा विचित्र प्रसंग है वो। कमल भी पानी में पैदा होता है ना, पानी में ही रहता है, और मगरमच्छ भी पानी में ही रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, गुरु के चरण कमल की विशेषता क्या है? तो कहते हैं सविलास महामोह ग्राह, बड़ा भारी ग्राह है जो सारे जगत को ग्रसन करता है। तुम्हारी मां को भी उसी ने खाया, तुम्हारे बाप को भी उसी ने खाया, और तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा है ना? सभी को खाया, नेहरू को भी खाया उसी ने, इंदिरा को खाया, राजीव को खाया है, कितने को खाया, और खाने की तैयारी कर रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। ग्राह, छोड़ेगा किसी को वो? कौन बचेगा उसके चक्कर में? लेकिन उस ग्राह का भी, उस मगरमच्छ को भी खाने वाला कोई एक पैदा हुआ है। वो कौन है? गुरु पादाम्बु जन्मने, महामोह ग्राह, उस ग्राह को भी ग्रासैक कर्मणे है, सबको खाने वाला जो मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ को भी खाना जिसका काम है। किसका काम है? इसका मतलब तुम्हारा गुरु जो है मांसाहारी है, है? क्या खाते हैं गुरु? ग्राह, मगरमच्छ खाते हैं। कौन सा मगरमच्छ? जो सबको खाने वाला मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ को कौन खाता है? तो गुरु खा जाता है। सबको खाने वाला मगरमच्छ कौन है भाई? सब विलास महामोह ग्राह कार्य सहित कारण सारा जगत जो जिसका कार्य है और वो जिसका कारण है, सबका कारण क्या है? माया अविद्या। या मोह शब्द प्रयोग किया है, मोह मृत्यु सम्मत हो यह कवि नाम। सनत कुमार जी ने मोह को मृत्यु कहा है, और क्योंकि मोह ही अविद्या है, मूल अविद्या। तो सबको ग्रसित करने वाला जो मूल अविद्या है वही है ग्रह। जगत में किसी को नहीं छोड़ता है वो मूल अविद्या, लेकिन उस मूल अविद्या को भी नाश करने का काम जो करता है वह महाग्राह कौन? गुरु का चरण। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास। सविलास का अर्थ होता है कार्य, राग द्वेष ये सब है, अस्मिता राग द्वेष आदि। सविलास हुए उसी का कार्य है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये उसी का। सविलास बच्चे कच्चे हैं किसके? अविद्या के। हाँ, तो अब उसकी मां को, मूल जो मां को न मारे बिना उसके बच्चे कच्चे मरेंगे हैं? तो तुम लोगों ने चंडी पाठ सुनी है ना, रक्त बीज। अब तो रक्त बीज का लक्षण ऐसा था कि उसका रक्त यदि जमीन में पड़ गया, जितने बूंद जमीन में गिरे उतने ही बड़े बड़े और राक्षस पैदा हो जाए, और उस रक्त से पैदा हुए राक्षसों को मारकर कब तक मार के कब तक पार पाएंगे? कि ऐसा करो कि रक्तों को जमीन में गिरने ही ना दो। तो महाकाली पैदा हुई, तब फिर एक भी बूंद जमीन में गिरने नहीं दिया, उसका रक्त खत्म हो गया, वो मर गई, वो मर गया रक्त बीज मर गया, तो सभी मर के खत्म हो गए बस। महामोह ये मूलाविद्या, ये जब तक रहेगा तब तक, मूलाविद्या जब तक रहेगा तब तक उसके जो बच्चे कच्चे हैं उनको तुम नहीं नष्ट कर पाओगे। तब उसको नष्ट करोगे तो वह अपने बच्चे कच्चे के सहित सभी नष्ट हो जाएंगे। तो मूलाविद्या को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? गुरु पादाम्बुजन में। एक ही कर्म है गुरु का, यही काम है कि तुम्हारी मूला विद्या को नाश कर देना, और का नाश करना उनका काम नहीं है। और क्या कहते हैं कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।